तो आप सभी का स्वागत है आज के शनिवार के दोपहर के कार्यक्रम में, सैटरडे लव फीस्ट आफ्टरनून का। आज का हमारा टॉपिक है जो बोर्ड पे लिखा है, क्या है, कौन पढ़ेंगे, क्या है टॉपिक? प्रभु जी बताइए क्या टॉपिक, व्हाट इज द टॉपिक टुडे, बताइए बताइए, पढ़िए, बोलिए ना देख करके। हाँ, किस में दर्शन? हाँ, पत्थर में भगवान का दर्शन। तो आप लोगों ने किया है भगवान का दर्शन? कितने लोगों ने पत्थर में भगवान का दर्शन किया है ऑलरेडी? अरे 2-3 लोगों ने किया है, ठीक है। तो भगवान जो है वो पत्थर है या भगवान है, इसके बारे में कौन भगवान है, वो कैसे भगवान बनते हैं, हर पत्थर भगवान क्यों नहीं होता, और अगर भगवान पत्थर है तो फिर हम किस तरह से भगवान को भज सकते हैं, तो ये सारी चीजों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और भगवान की सेवाओं में क्या अपराध होते हैं, तो बहुत ही मुख्य, एक भक्त के जीवन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही मुख्य है कि हम ये जाने कि भगवान किस तरह से पत्थर में विराजमान होते हैं। तो आप सब लोग हाथ जोड़कर भगवान की प्रार्थना करिए, अपने मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑफ कर दीजिए, और कृपया करके जो इधर की साइड बैठे हैं सब लोग मेरे सामने आ जाइए ताकि मैं सामने देख कर बोल सकूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सामने आ जाइए, इधर की साइड। अरे बोल, प्रभु जी को उठाइए सोते में से, उनको बोलिए आ गया, आ गया जी प्रभु जी, ठीक है। तो सब लोग हाथ जोड़कर बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नष्टके कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरं यत्र पादं हम वंदे श्री गुरु दीन तारणम् परमानंद माधवम् श्री चैतन्य ईश्वरम् नमो विष्णु पादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत सामेति नाम्ने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं बहुत ही मुख्य है। इसमें बताया गया है श्रीमद् भागवतम 11वां स्कंद, इससे हम पढ़ने जा रहे हैं श्रीमद् भागवतम से। इसमें उद्धव जी जो भगवान के मित्र हैं वो पूछ रहे हैं भगवान से, स्वयं भगवान से। आधे से ज्यादा लोग इस बारे में दुखी रहते हैं, सोचते रहते हैं, टेंशन में रहते हैं कि किस तरह से ये मूर्ति पूजा का व्यवधान इस सनातन धर्म, वैदिक हिंदू धर्म या फिर वैष्णव धर्म में आया, जो कि पत्थर को भगवान मानने लग जाते हैं। तो यहाँ पर और हम कैसे मान सकते हैं कि भगवान ने, लोग पूछते हैं भगवान ने कहा कहा कि मेरी पूजा ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे मत करो। तो इन्हीं सारे तर्क वितर्कों को उत्तर देते हुए श्रीमद् भागवतम और भक्ति रसामृत सिंधु, इन दो ग्रंथों से आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। भक्ति रसामृत सिंधु के प्रथम अध्याय से और श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद 27वें अध्याय से हम चर्चा करेंगे। तो श्री उद्धव जो भगवान जैसे दिखने में थे, आपने सबने सुना उद्धव जी का नाम, उद्धव है ना, जो वृंदावन में गोपियों से मिलने गए थे कि भगवान कृष्ण अब नहीं आएंगे आपसे मिलने के लिए, तो उनका संदेश पहुंचाने के लिए उद्धव जी कहाँ जाते हैं, वृंदावन जाते हैं गोपियों से मिलने के लिए। और वहां जाकर देखकर हैरान हो जाते हैं कि ऐसी गोपियां सदा भगवान के भाव में, प्रेम में विलीन है। तो ऐसी गोपियां जब भगवान के भाव में विलीन थी तो उनसे जाकर उन्होंने कहा इतनी आसक्ति की क्या बात है, भगवान तो कण कण में विराजमान है, फिर इतना रोना धोना किस बात का। तो उद्धव जी को जिस तरह से उन्होंने भक्ति का प्रवचन दिया, तब उनको समझ में आया कि मैं जो हूं ना, शास्त्र को सिर्फ अध्ययन किया हूं लेकिन मैंने अपने जीवन में उतारा नहीं है, और अभी प्रेम तो कहीं है ही नहीं, नाम मात्र कोई प्रेम मेरे जीवन में नहीं है। तो गोपियां जो है वो सबसे उत्तम दर्जे के भक्त बताए गए। इसीलिए ब्रजमंडल वृंदावन धाम में जब भी हम प्रवेश करते हैं तो वहां की जो ब्रज रज है मिट्टी, उसको अपने सर पे, मस्तक पे धारण करते हैं। कहते हैं वृंदावन धाम की मिट्टी अगर शरीर पे लग भी जाए तो उसको झाड़ना नहीं चाहिए, उतारना नहीं चाहिए, क्योंकि बड़े भाग्यशाली व्यक्ति होते हैं जिनके मस्तक पर वो रज लगती है जिस पर गोपियां चलती हैं। भगवान गोपियों के चरण रज को अपने मस्तक पर धारण करना चाहते हैं, सोचिए। तो ऐसे उसको कहते हैं प्रेम संबंध। ये उद्धव जी को समझ में आया, लेकिन अब उद्धव जी भगवान से पूछ रहे हैं भागवतम में कि किस प्रकार से आपकी पूजा की जाए। भगवान ने गीता में कहा मन मना भव मद भक्तो मदयाजे माम नमस्कुरो मामेवा सत्यम ते प्रतिजानो प्रियसि मे। तुम मेरे प्रिय हो अर्जुन, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं मेरे भक्त बनो, मन में मेरा ध्यान करो, मेरे को नमस्कार करो और मेरी पूजा करो। ये चार चीजें भगवान ने गीता में बताई दो बार, 9वें अध्याय में भी और 18वें अध्याय में। तो जब उद्धव जी ने भी यही प्रश्न पूछा, वो पूछते हैं श्री उद्धव उवाच क्रिया योगम समाचक्ष्वम भवतराधनम प्रभो यस्मात्त्वम ये यथामर्चितम सात्वताम सात्वतारिषभ। श्री उद्धव ने कहा हे प्रभु, हे भक्तों के स्वामी, आप कृपा करके मुझे अपने आर्चा विग्रह रूप में अपनी पूजा की नियत विधि बताएं। आर्चा विग्रह की पूजा करने वाले भक्तों की क्या योग्यताएं होती हैं? ऐसे पूजा किस आधार पर तय की जाती है तथा पूजा की विशिष्ट विधि क्या है? कि विधि क्या है, कैसे आपकी पूजा की जाए, कैसे आप पत्थर में प्रवेश करते हैं, कैसे हम पत्थरों को भगवान मानने लगते हैं। तो अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है, सारे पत्थर भगवान होते हैं हाँ या ना? हाँ जी, सारे लोग बोलिए ना, इधर वाले लोग सो रहे हैं। सारे पत्थर भगवान होते हैं या नहीं होते हैं? तो कैसे पत्थर भगवान बनता है, कौन बताएंगे? हाँ जी, कैसे? प्राण प्रतिष्ठा कैसे होती है पता नहीं है हम लोगों को, तो आज हम सीखेंगे कैसे होती है प्राण प्रतिष्ठा, कैसे वो भगवान इस पत्थर में विराजमान हो जाते हैं, है ना। तो बहुत ही गुरुतम विषय है ये। अगर पत्थर को हम भगवान मानते तो इस पूरे द्वारका में जगह जगह पत्थर लगे हुए हैं, माइलस्टोन्स। 17 किलोमीटर दूर है अब द्वारका, 3 किलोमीटर दूर है अब द्वारका, 0 किलोमीटर पे आ गए हैं द्वारका, है ना। रेडिसन ब्लू या इतनी दूरी पे, 1 किलोमीटर की दूरी पे, तो ये सारे चीजें बोली जाती हैं। तो हम उन पत्थरों को दंडवत करते हैं क्या? करते हैं कि नहीं? क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उसमें भगवान नहीं है। तो जो मूर्ति की हम पूजा कर रहे हैं, हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि ये भगवान के रूप में है, हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके अंदर भगवान है। तो हम मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, हम मूर्ति में भगवान की पूजा करते हैं। तो भगवान ने आगे क्या बताया वो हम सुनेंगे। उद्धव जी के उत्तर में श्री भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाच नाहि अंत अनंत परास्य कर्म कांडस्य च उद्धव संक्षितम वर्णीय शम यथावतम अनुपूर्वशः। भगवान ने कहा, हे उद्धव, आर्चा विग्रह पूजा करने के लिए इतने वैदिक निर्देश हैं कि उनका कोई अंत ही नहीं है। अगर हम मूर्ति में भगवान को चाहते हैं तो इसके वैदिक नियम बहुत हैं। इसलिए मैं तुम्हें विषय तुम्हें संक्षेप में एक एक करके सारे नियम बताऊंगा। तो भगवान उद्धव जी को सारे नियम बता रहे हैं, किस प्रकार से मैं पत्थर में प्रवेश करता हूँ। मार्बल की दुकान में रखा हुआ हर पत्थर भगवान नहीं है, गिफ्ट शॉप में रखा हुआ हर देव पूजा नहीं होती है। दुर्गा जी की फोटो ले आते हैं घर में रखते हैं, बोले ये कौन है, बोले भगवान है। हिंदुस्तान में तो यही है, लक्ष्मी गणेश जी पूजन होता है दीपावली पे, तो सड़कों पे लक्ष्मी गणेश बिकते हैं, बोले ये कौन है, बोले भगवान है। साईं बाबा की मूर्ति किसी को गिफ्ट कर दे, बोले क्या दिया, बोले भगवान है। पहले तो ये नहीं पता भगवान कौन है, ऊपर से अगर भगवान पता भी चल जाए कि ईश्वरम परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदम सर्व कारण कारणम, अगर ये पता भी चल जाए कि कृष्ण भगवान है, तो हम सोचते हर फोटो जो कृष्ण भगवान का उसमें भगवान है, है नहीं है, उसमें तो प्रतिरूप है भगवान का। लेकिन जो मंदिर होते हैं, मंदिर भी कौन से मंदिर, जहां वैदिक नियम, भगवान ने कहा इसलिए मैं तुम्हें संक्षेप में एक एक नियम बताऊंगा। जो धर्म कोई भी मंदिर अगर मूर्ति लगा ली पत्थर की भगवान की और नियम पालन नहीं कर रहा है, ये जो दिखे हैं इसके अंदर 11वें स्कंद भागवतम में, तो वो मूर्ति में भगवान नहीं रहते हैं। जैसे मान लीजिए आपको चिट्ठी पहुंचानी है कलकत्ता, कलकत्ता एक चिट्ठी भेजनी है अपने परिवार को, तो क्या करते हैं बताइए जल्दी, सोइए मत, क्या करते हैं? हाँ जी, एक एक करके हाथ खड़ा करके, हाँ हाँ जी माता जी, लेटर बॉक्स में डालते हैं और हाँ पोस्टल एड्रेस लिखते हैं उसके ऊपर, ओके। और माता जी और कोई, हाँ कैसे भेजते हैं चिट्ठी, कहीं कलकत्ता भेजनी है तो? प्रभु जी लोग चिट्ठी नहीं भेजी आज तक आप लोगों ने, बताइए फिर क्या इंपॉर्टेंट है चिट्ठी भेजने के लिए? एड्रेस लिखना चाहिए और कहाँ डालना चाहिए? कोरियर के थ्रू नहीं, लेटर बॉक्स में डाल रहे हैं, तो कौन से लेटर बॉक्स में? हाँ जी, किस कलर का होता है? रेड कलर का, लाल रंग का, मतलब हर लाल रंग का डब्बा चिट्ठी का डब्बा होता है, सही है हाँ या ना? नहीं, तो फिर कौन से डब्बे में चिट्ठी डाले कलकत्ता पहुंचेगी, जिसमें क्या लिखा हो? इंडियन गवर्नमेंट का होना चाहिए, ऑथराइज, हाँ, जो इस बात को स्थापना करता है कि ये चिट्ठी डाली गई इसमें से सही निकलेगी, वरना हर खंबे पे लाल रंग के डब्बे लटके हैं, है ना, उसमें कुछ कूड़ादान भी हो सकता है, लाल रंग का डस्टबिन, स्वच्छ भारत स्वच्छ दिल्ली बड़ा डाल दिया, आपकी सफाई हो गई चिट्ठी की, स्वच्छ हो गया, हा? तो इसलिए कहाँ डाले हैं उसको हम? ऐसे लेटर बॉक्स में जहां से वो जाए। तो जब हम अपनी प्रार्थनाएं डालते हैं, भगवान के प्रणाम करते हैं, तो अनेकों मंदिर है, लोग सोचते हैं इस्कॉन द्वारका जाएंगे तो बहुत दूर पड़ता है, हमारे घर के पास ही में एक मंदिर है उसमें चले जाते हैं, प्रणाम कर लेते हैं, बात तो एक ही है, भगवान भगवान तो सब बराबर होते हैं, हाँ, तो ऐसा नहीं है, भगवान भगवान बराबर भगवान की मूर्ति में जिसमें भगवान की आराधना नहीं की जाती है विधि पूर्वक, वहां भगवान नहीं रहते, वहां सिर्फ पत्थर होता है, इसलिए उसको मूर्ति कहते हैं। लेकिन हमारे मंदिर में जिस मूर्ति में भगवान रहते हैं उसे आर्च विग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्च विग्रह। तो आर्च विग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें भगवान रहते हैं। एक कपड़ा टंगा है दुकान में और एक कपड़ा उसने पहन रखा है, किसने, मॉडल जो होते हैं ना, डमी खड़ी होती है दुकान के बाहर, और एक कपड़ा दुकान में खड़ी हुई एक लड़की ने पहना है जो चल सकती है बोल सकती है। तो दोनों में से अगर आप किसी से वार्तालाप करना चाहते हैं, क्वेश्चन और उसका चाहिए आंसर, प्रश्न का चाहिए उत्तर। अभी डमी वाली लड़की को प्रश्न पूछेंगे तो उत्तर देगी, और जो ओरिजिनल पहने हैं उसको प्रश्न पूछेंगे तो देगी। लेकिन कपड़ा, दोनों ने ब्लैक कलर का कपड़ा पहना है या व्हाइट कलर का कपड़ा पहना है, क्या फर्क है दोनों में? एक में जान नहीं है और दूसरे में जान। ऐसे ही मूर्ति में भगवान नहीं होते, आर्चा विग्रह में भगवान। अब प्रश्न ये उठता है कि प्रभु जी, अगर भगवान इस्कॉन के हर मंदिर में रहते हैं, श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश जगन्नाथ बलदेव सुभद्र महारानी द्वार रहते हैं, अगर भगवान सभी विग्रहों में रहते हैं तो फिर हम धाम को स्पेशल क्यों बोलते हैं? हम बोलते हैं ना वृंदावन धाम, वहां गए थे जी राधा श्याम सुंदर का दर्शन किया, मजा आ गया। पुरी गए थे जगन्नाथ जी का दर्शन करने, हाँ जी, रामेश्वरम गए थे, तो हम वहां क्यों जाते हैं घूमने, पिकनिक, फोटोग्राफ किस लिए जाते हैं? वहां पे दर्शन तो यहाँ पे भी हो रहा है, भगवान तो एक ही है, भगवान अलग अलग थोड़ी है। यहाँ पे दर्शन करो या आप गुजरात में दर्शन करो भगवान के, फिर क्या फर्क है? हाँ, वहां लीलाएं की है भगवान ने, वहां भगवान की भूमि भी जो होती है वो भी कैसी होती है? स्पिरिचुअल होती है। जैसे पोस्टल, आपने चिट्ठी डाली लेटर बॉक्स में, खंबे पे लगे हुए हैं, और एक आप चिट्ठी लेके पहुंच गए जीपीओ, ग्रैंड पोस्ट ऑफिस, कनॉट प्लेस, वहां जाकर आपने चिट्ठी दी, वहां पर उसकी जमीन पे देख के दूर से लग जाएगा पूरी बिल्डिंग पे, क्या ये पूरा चिट्ठी का काम हो रहा है यहाँ पे, आदान प्रदान हो रहा है चिट्ठियों का, है कि नहीं? ऐसे ही जब आप धाम में प्रवेश करते हैं, वहां खंबे वाला लेटर बॉक्स नहीं है, वहां पूरा जीपीओ है, ग्रैंड पोस्ट ऑफिस, वहां पर इस गेट से घुसो, इस गेट से घुसो, कहीं भी मत घुसो, आपको पता चल जाएगा यहाँ पे क्या हो रहा है, चिट्ठियों का आदान प्रदान। तो ऐसे ही अगर हम अपनी चिट्ठी प्रार्थना और भरी हुई भगवान को देना चाहते हैं तो उस भगवान को दीजिए जहां मूर्ति में भगवान रहते हैं, और इनको क्या कहा जाता है? आर्चर। आर्चर क्यों कहते हैं? आर्चर का मतलब जिसकी अर्चना की जाती है, आर्च विग्रह। इसलिए भगवान का नाम है ईश्वरम परम कृष्णा सच्चित आनंद विग्रह। विग्रह मतलब जो सच्चित आनंद की मूर्ति समान है। अभी कुछ दिन पहले इस्कॉन में एक मैं देख रहा था, जो नए नए लोग आते हैं ना मंदिर में दर्शन करने, वृंदावन में, तो दर्शन करने के बाद देखा राधा श्याम सुंदर का दर्शन, तो ओ मम्मी मम्मी देखो कितने सुंदर मूर्ति है। क्या बोल रहे थे? कितनी सुंदर, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग नहीं हुई है। जो आज ही आप प्रवचन सुन रहे हैं, इसको सुनने के बाद आपको पता चलेगा आप भगवान को मूर्ति नहीं कहेंगे, या तो कहेंगे कितने सुंदर भगवान है ना, या फिर क्या कहेंगे, कितना सुंदर आर्चा विग्रह है, ये नहीं कहेंगे कितने सुंदर मूर्ति है। मूर्ति में भगवान नहीं होते। जैसे डमी वाली जो लड़की है और एक ओरिजिनल लड़की है, या डमी वाला लड़का है और एक ओरिजिनल लड़का है, डमी वाले को कहे हाँ कितना कितनी सुंदर लड़की है, तो लोग हंसेंगे, ये सुंदर लड़की थोड़ी है, तो डमी है। जब लड़की को बोलेंगे कितनी सुंदर या कितना सुंदर लड़का है, तब असलियत में आपने सही शब्दों का प्रयोग किया है कि नहीं। तो इसी तरह से हमें भगवान को मूर्ति कहना अपराध है, भगवान को भगवान कहें या फिर उनको आर्चक विग्रह कहें। तो हम आगे चलते हैं और इसमें पूछते हैं कि किस प्रकार से भगवान की आराधना करनी चाहिए। तो यहाँ पर भगवान स्वयं अपने मुख से श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में बोल रहे हैं, पूर्वम स्नानम प्रकुर्वृति धोतदातम अंगम शुद्धये उभये अपि च स्नानम मंत्रमृत ग्रहण आदिना। मनुष्य को चाहिए कि पहले वे अपने दांत साफ करके तथा स्नान करके अपने शरीर को शुद्ध करें, तत्पश्चात वे शरीर को मिट्टी से मलकर तथा वैदिक एवं तांत्रिक मंत्रों के उच्चारण द्वारा दोबारा शुद्ध हो। तो पहले भक्त क्या करते हैं? स्नान करते हैं, नहाते हैं, नहाने के बाद तिलक धारण करते हैं, मिट्टी लगाते हैं, गोपी चंदन, इससे क्या होता है, मंत्र बोलते हैं ओम केशवाय नमः, जो डबल शुद्धि, पहले
पानी से, जल से शुद्धि, फिर मंत्र शुद्धि और चंदन से शुद्धि। इस तरह से हम अपने शरीर पे 12 स्थानों पे तिलक लगा के शरीर को शुद्ध करते हैं, फिर हम तैयार होते हैं पूजा करने के। ये नहीं होता है मॉर्निंग वॉक पे निकले या पीछे पार्क से बहुत सारे लोग आते हैं सुबह, या डोलची लेके दूध भरने जाते हैं तो बोले मंदिर होते हुए चलते हैं, तो ट्रैक सूट में, निक्कर में, स्लीपिंग सूट में मंदिर आ जाते हैं, तो वो मंदिर आएंगे तो उनकी प्रार्थनाएं स्वीकार नहीं की जाएंगी। आपको इंटरव्यू देने जाना हो ऑफिस में नया नया, तब इंटरव्यू देने जाते हैं तो कैसे कपड़े पहन के जाते हैं? कटेले, फटेले, छिछड़े वाले ऐसे पहनते हैं, साफ सुथरे फॉर्मल्स, टाई सूट सब पहनकर जाएंगे। बोले क्या है? आज इंटरव्यू है। एक छोटा सा कोई मैनेजर इंटरव्यू ले रहा है तो उसके लिए टाई सूट पहन के आते हैं, और जहां साक्षात परब्रह्म कृष्ण खड़े हैं सबकी इच्छाएं पूर्ति करने वाले, वहां स्लीपिंग सूट पहन के आते हैं। शादी में जाना हो लोकली किसी, तो क्या पहन के जाते हैं? बेस्ट ड्रेस निकालते हैं, सूट निकालो, साड़ी निकालो, और भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए फटा पुराना स्लीपिंग सूट नहाए बिना मंदिर आ जाते हैं, तो गलत है। मनुष्य को चाहिए कि पहले अपने दांत साफ करें, स्नान करें, शुद्ध बने, और उसके बाद मिट्टी चंदन स्नान आदि करके मंत्र उच्चारण करके भगवान के मंदिर में आए। तो किसको हम मंदिर में बोल सकते हैं कि हाँ ये मूर्ति इस चीज की बनी है इसलिए इसमें भगवान प्रवेश करते हैं? तो भगवान कहते हैं मैं 8 प्रकार की चीजों में प्रवेश करता हूं जिसको आप भगवान कह सकते हैं। तो अब हम सुनेंगे कौन सी वो 8 चीजें हैं जिसमें भगवान प्रवेश करते हैं। कहते हैं शैली दारु मैलो ही ले प्याले क्या चासे कति, मनोमयी मणिमयी प्रतिमा अष्टविधा स्मृता। अष्टविधा, ये 8 प्रकार की चीजों में मैं प्रवेश करता हूं, भगवान ने कहा अगर तुम इसकी मूर्ति बनाओगे इन 8 चीजों की तो मैं उसमें घुस जाऊंगा। जैसे हमें कोई बोले कि प्रभु जी आप किस में प्रवेश करते हैं, तो हम कहते हैं हम धोती कुर्ते में प्रवेश करते हैं। अगर जीन्स और टी शर्ट हो और आप कहें इसमें प्रभु जी प्रवेश करिए तो हम नहीं करेंगे। तो एक मटेरियल चाहिए प्रवेश करने के लिए जो व्यक्ति को अच्छा लगता है। तो कृष्ण को क्या अच्छा लगता है? उन्होंने बोला 8 प्रकार की चीजों मुझे अच्छी लगती है। तो उसने बताया सबसे पहले शैली, शैल मतलब पत्थर है ना, कहते हैं ना शैल पुत्री, पार्वती जी का नाम है पर्वत की पुत्री, शैल पुत्री, शैल मतलब पर्वत। दारुमयी, दारू मतलब लकड़ी, फिर लोही, लोही मतलब धातु, धातु मतलब पीतल, चांदी, सोना, लोही। लेप्य, लेप्य मतलब मिट्टी या चंदन से बनी हुई मूर्तियां। लेख्या, लेख्या मतलब चित्रित, फोटोग्राफ, फोटोग्राफ होती है ना चित्रित। फिर सेकति, सेकति मतलब बालू, बालू होती है ना जमुना के किनारे बालू, उस बालू से भी बनती है, जैसे रामेश्वरम में जो भगवान शिवलिंग है वो बालू से बना हुआ है। और मनोमयी, मन से बनाई हुई मूर्तियां, तो कुछ लोग मन से भी भगवान की प्रार्थना करते हैं और भगवान कहते हैं मैं उसे स्वीकार भी करता हूं। इस प्रतिमा को अर्चा विग्रह कहते हैं और 8 प्रकार से बताया गया भगवान के अर्चा विग्रह रूप का 8 प्रकार है, पत्थर, लकड़ी, धातु, मिट्टी, चित्र, बालू और मन या रत्न प्रकट होना बतलाया जाता है, ऐसा भागवतम कहती है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। तो अब हम इन सारे 8 चीजों के जरा एग्जाम्पल उदाहरण सुनते हैं। पत्थर की मूर्ति कौन सी फेमस है? मूर्ति आप बता सकते हैं कौन सी मूर्ति जो पत्थर की और फेमस है? आप लोगों का क्विज स्टेज शुरू हो गया। पत्थर की मूर्ति जो फेमस है, शालिग्राम, अच्छा और हाँ संगमरमर के भगवान, जैसे जैसे राधा पार्थसारथी भगवान पत्थर से बने हुए हैं ना, संगमरमर के पत्थर काला या सफेद, तो उसमें भगवान प्रवेश करते हैं। फिर दारुमयी लकड़ी की बनी हुई मूर्तियां कौन सी है? जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, सुदर्शन, लकड़ी की मूर्तियां। फिर लोही धातु से बनी हुई कौन सी मूर्तियां धातु की? हाँ लड्डू गोपाल, रुक्मणी द्वारकाधीश, गौर निताई, सब धातु से बने हुए हैं ना, इसमें भगवान प्रवेश करते हैं। लेप्य मिट्टी से बनी हुई मूर्तियां या चंदन से बनी हुई मूर्तियां, तो कौन सी है? लेप्य, कोई मूर्ति याद है मिट्टी से बनी हो या फिर चंदन से बनी हो, कौन सी मूर्ति होती है बताओ? लक्ष्मी गणेश, दीपावली पे लोग लाते हैं गणेश लक्ष्मी, लेकिन लक्ष्मी गणेश की पूजा से ज्यादा उत्तम है लक्ष्मी विष्णु की पूजा करना। तो अगर मूर्ति लेनी है मिट्टी की तो लक्ष्मी विष्णु की होती है, और पहले जमाने में कई मंदिरों में मिट्टी की मूर्तियां ही होती थी, उसमें भगवान प्रवेश करते हैं। फिर है लेख्या, लेख्या मतलब चित्रित, फोटोग्राफ्स। तो फोटोग्राफ्स में जैसे जगन्नाथ जी जब नहीं थे हमारे मंदिर में तो वो जगन्नाथ जी का फोटोग्राफ रखा हुआ था, तो उसमें भी भगवान प्रवेश करते हैं। पेन भी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से बताया गया है। और आखिरी बालू, तो हमने बता दिया रामेश्वरम। और मन से बनाई हुई मूर्तियां, मन से मूर्ति कौन सी है बता सकते हैं? भक्ति रसामृत सिंधु में एक कथा आती है कि एक ब्राह्मण थे और वो बहुत ही निर्धन थे, गरीब थे। तो उन्होंने सोचा कि मैं भगवान की सेवा करूं। अब भगवान की सेवा करने के लिए उनके पास धन दौलत नहीं था, तो कैसे भगवान की सेवा करें? ना कपड़ा है, ना फूल पत्ती है, पानी चढ़ाने के लिए उनके पास बर्तन नहीं है, कपड़े नहीं है शुद्ध होने के लिए। तो बोले भगवान की सेवा कैसे करूं? तो गुरु ने कहा, यही श्लोक बता के, कि भगवान मन के द्वारा भी सेवाएं सिखा। लेकिन जिसका मन चंचल है उसके लिए मन से स्वीकार नहीं करते। लोग बोलते हैं मन मन में महामंत्र कर लेते हैं, वो नहीं चलेगा। उस प्रकार की शुद्धि होनी चाहिए। भक्त की इतनी शुद्धि थी, उन्होंने नाम जप करके भगवान का इतनी शुद्धि प्राप्त कर ली थी कि जब मन को आंखें बंद करते थे तो मन भगवान के विग्रह पर ध्यान केंद्रित कर पाते थे। हाँ, तो जैसे अगर आपका प्रेम भगवान से बढ़ जाए तो यहाँ बैठे बैठे आंखें बंद करें और हमें वृंदावन में राधा श्याम सुंदर का दर्शन हो जाए, आंखें बंद करें यहाँ से भगवान जगन्नाथ का दर्शन हो जाए, तो फिर हमारा संबंध है उनके साथ और फिर आप भगवान को मन से सेवा कर सकते हैं। तो ऐसे उस ब्राह्मण ने मन से सेवा करना शुरू किया। तो ये कोई लोटपोट की कहानी नहीं बता रहे हैं आपको, ये कहानी या कथा साक्षात भक्त के साथ हुई। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं, वो कहते हैं उस भक्त ने मानसिक रूप से भगवान की पूजा करनी शुरू करी। एक दिन इतना प्रेम आया, वो रोज बैठ जाते थे आंखें बंद करके और सोचा आज भगवान को दूध की खीर का भोग लगाना चाहिए। तो दूध की खीर बनाई और दूध जैसे उबलता है तो उबलते उबलते ज्यादा गर्म हो गया। जब बहुत गर्म हो गया दूध तो सोचने लगे, अरे इतना गर्म गर्म अगर भगवान को खिलाऊंगा तो उनका मुंह ना जल जाए, ये प्रेम है उनका भगवान से, कहीं मुंह ना जल जाए। तो उसने सोचा कि चलो मैं इस दूध की जो गर्माहट है इसको महसूस करके देखूं। तो कैसे महसूस करूं? तो उसके सामने ना दूध है, ना चीनी है, ना खीर है, ना बर्तन है, ना आग है, सब कुछ कहां चल रहा है? आंखें बंद की हैं, पहले ओ भगवान का अभिषेक हो रहा है पानी से, आहा अब भगवान को वस्त्र बना रहे हैं, कृष्ण को पीले, राधा रानी को नीले। अब क्या कर रहे हैं? अब मैं पुष्प चढ़ा रहा हूं, अब मैं अगरबत्ती कर रहा हूं, अब मैं दिया कर रहा हूं और अब मैं भोग लगा रहा हूं। और जब से उन्होंने सोचा भोग, तो भोग तो गरम गरम था, तो उन्होंने मानसिक रूप से उसमें उंगली डाली और जैसे उंगली डाली उनकी समाधि टूट गई और बोले ओह राधे कृष्ण, और उनकी उंगली जो थी पूरी जल गई मानसिक। अगर आप ध्यान पूर्वक मानसिक रूप से भी भगवान को कुछ भेंट करते हैं तो भगवान उसको ग्रहण करते हैं। हाँ, भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। आप मुझे कुछ भी दें, पत्ता फूल फल या जल, लेकिन दे कैसे? भक्ति पूर्वक। लाए अपनी अहंकार में बहुत बड़ी कार के अंदर रख के एक फ्रूट टोकरी ले आए बहुत बड़ी, उसके अंदर 5,000 रुपए के फ्रूट है, हल्दीराम की मिठाई है, बहुत सारा सामान ले आए, सोना चांदी की ट्रे ले आए। अब बोले सारे भक्तों को हटा दो, मेरा स्थान बनाओ, क्योंकि मैं जो हूँ इतना कुछ लेके आया हूँ, ठाकुर जी खाओ, इतना तो तुमने कभी नहीं खाया होगा, लो खाओ मैं खिला रहा हूँ तुमको। जो दुनिया को खिला रहा है वो अति अहंकार इतना आ जाता है, बोलता है मैं तुम्हें खिला रहा हूँ। तो भगवान फिर ऐसे अहंकारी का एक्सेप्ट नहीं करते। भगवान कह रहे हैं मुझे तुलसी का पत्ता, एक पत्ता भी अगर प्रेम पूर्वक दोगे तो मैं उसको ग्रहण कर लेता हूं। तो ये यहां पर भगवान बता रहे हैं कि किस प्रकार से मैं चीजों को ग्रहण करता हूं। तो भगवान को क्या अर्पित करें, इसके बारे में भगवान ने भागवतम में वर्णन किया। कहते हैं द्रव्य प्रसिद्ध मत योग प्रतिमा आदिशु आमिना भक्तस्य चायता लब्धे हृदय भावे न चा एव ही। मनुष्य को चाहिए उत्तम से उत्तम साज सामग्री भेंट करके मेरे आर्चा विग्रह रूप में मेरी पूजा करें। उत्तम से उत्तम वस्तु क्या करें? भेंट कर। भौतिक इच्छा से पूर्णता मुक्त भक्त मेरी पूजा जो भी वस्तु मिल सके उसी से करे, यहाँ तक कि वह अपने हृदय के भीतर मानसिक साज सामग्री से भी मेरी पूजा कर सकता है। तो आप कभी ट्रेन में हैं और आप मंगल आरती नहीं कर पाए, आप बस में हैं, कार में हैं, यात्रा में हैं और नहीं कर पा रहे हैं, तो ये मत बोलिए सो जाते हैं चलो हम तो यात्रा में हैं। तो मानसिक रूप से भगवान की आराधना करनी चाहिए। तो ये आराधना जहाँ पर भी हो, गुरु नहीं है तो गुरु की मानसिक रूप से आराधना करें, भगवान सामने विग्रह नहीं है, मंदिर नहीं है तो भगवान की मानसिक रूप से सेवा करें। लेकिन जब मंदिर है और आप आ सकते हैं, भेंट कर सकते हैं, तो उत्तम वस्तु, उत्तम से उत्तम वस्तु भगवान को भेंट करनी चाहिए। जब भगवान को हम भेंट करते हैं तो भगवान कहते हैं अहम भक्ता पराधीन, मैं उस भक्त के पराधीन हो जाता हूँ। जैसे राजा अकबर का एक सिपाही था, राजा अकबर ने उस सिपाही से कहा कि जाओ सिपाही, आज मेरी इच्छा है मैं गुलाब के फूलों की माला पहनना चाहता हूँ। और एक गरीब भक्त था, उसने उस दिन सोचा आज मैं भगवान को गुलाब के फूल की माला भेंट करना चाहता हूँ। अब वो व्यक्ति जो सिपाही था अकबर का, वो आगरा से चलकर कहाँ आया, वृंदावन, क्योंकि वृंदावन के फूलों की माला जो है वो तो कुंज है ना, निकुंज, सेवा कुंज है, तो वहां पर बहुत सुंदर सुंदर फूल मिलते थे। अभी उन्होंने सोचा फूल लूंगा सिपाही ने तो कहाँ से लूंगा, वृंदावन से, राजा को उत्तम कैटेगरी, उत्तम श्रेणी का फूल अर्पित करूंगा। और इस भक्त ने भी सोचा कि आज मैं अपने राधा श्याम सुंदर वृंदावन बिहारी को क्या अर्पित करूंगा, फूल, कौन से फूल, गुलाब के फूल, हाँ वृंदावन के। तो अभी दोनों पहुंच गए एक ही दुकान पे, और टोकरी फूल वाले जो था, जैसे हमारी माता जी प्रेम पूर्वक फूल माला बनाती है, ऐसे ही वो फूल माला लेकर, एक ही माला थी उसके पास, कितनी माला थी, कितनी थी, सो रहे हैं, एक माला थी, और एक माला लेकर वो बोलने लगा कौन लेगा भाई, कौन लेगा, फूल ले लो, फूल ले लो। तो अकबर के सिपाही ने कहा मुझको दे दो, राजा अकबर पहनेंगे और खुश होंगे तो तुम्हें इनाम भी देंगे। कितने की माला है, कहा एक रुपए की। और भक्त आया वहां पर, भक्त बोला नहीं नहीं, अकबर तो खाली एक इंसान है, मैं तो भगवान के लिए माला ले जाना चाहता हूं, भगवान से बढ़कर कोई नहीं होता, लाओ ये अपनी माला मुझे दे दो। कितने की है, एक रुपए। तो अकबर के जो सिपाही था बोला एक रुपए की माला मैं लेके जाऊंगा, तू जानता नहीं है भगवान, भगवान कुछ नहीं होता, जो कुछ होता है वो राजा होता है, राजा से बढ़कर कुछ नहीं होता, लाओ दो मुझे दो। तो उसने कहा देखो भाई, फूल वाले ने सोचा ये बिजनेस करने का अच्छा मौका है, दोनों लड़ रहे हैं, रेट बढ़ा देता हूँ, इसीलिए आज हमारे समाज में महंगाई बढ़ रही है, क्योंकि हम लोग आपस में लड़ते हैं। अगर प्रभुपाद जी लिखते हैं अपने शास्त्रों में कि अगर लोग अपना ये छल करने की इच्छा समाप्त कर दें तो हर एक जीव के लिए कई पुश्तों तक खाना अवेलेबल है, मौजूद है, लेकिन हम खाना क्यों नहीं खा पाते हैं, क्यों कमी है संसार में, क्योंकि कुछ लोग छल के कारण, चीटिंग के कारण वो क्या करते हैं, उसको लॉक करके रख देते हैं, ताला डाल के रख देते हैं। कई कई जगह खेतों में चावल सड़ रहे हैं, गोदामों में चावल सड़ रहे हैं, लेकिन जिस सरकार का प्रतिनिधि जो है वो व्यक्ति ताला खोलता नहीं है, खोल दे तो लोगों के पास खाने की कमी नहीं रहे, वो क्यों स्टॉक करते हैं, क्यों गोदाम में रखते हैं, ताकि रेट जो है बढ़ जाए, ऐसा प्रभुपाद जी बताते हैं। भगवान ने तो हरेक के लिए मुंह दिया है तो खाना भी दिया है। तो इस तरह से हुआ और दोनों में देखकर लड़ाई, उसने रेट बढ़ा दिया, बोला दो रुपए का है, दो रुपए का माला, एक का नहीं है, अब रेट बढ़ गया, अभी अभी रेट बढ़ गया इसका, तुरंत दो रुपए की माला हो गई। तो सिपाही बोला हाँ अब ठीक है, ये गरीब कहां से दो रुपए देगा, मैं दूंगा दो रुपए। पुराना जमाना आज से 500 साल पहले, और अकबर का जमाना 600 साल। तो अब वो कहा दो रुपए की माला, तो उसने भक्त ने कहा दो की है तो मैं तुम्हें दो रुपए दूंगा। तो अकबर का सिपाही बोला अच्छा दो रुपए दे देगा भगवान के लिए, कह रहा हाँ दूंगा, अच्छा भगवान के लिए दो रुपए देगा, चल मैं 5 रुपए दूंगा। तो अब भक्त बोला 5 देगा, मैं 10 दूंगा। तो फूल वाला हंसने लगा, अरे तू करीब सा व्यक्ति, 1 रुपया मुश्किल से तू भीख मांगकर इकट्ठा करता है कई दिनों में, तब 1 रुपया लेके आता, उस जमाने का 1 रुपया बहुत महंगा, और ये जो है राजा का सिपाही है, अभी कोष खोल देगा ना तो ये हजारों स्वर्ण मुद्राएं दे सकता है, तो किससे कॉम्पिटिशन कर रहा है, रहन दे, ये जो कॉम्पिटिशन है ना इसको यहीं बंद कर दो। वो माना नहीं, भक्त बोला लूंगा तो आज मैं लूंगा भगवान के लिए, भगवान की इज्जत रखना इस भक्त का गुण है, उसने प्राण किया, प्रण लिया कि आज चाह कुछ भी हो जाए मैं भगवान को माला पहना के रहूंगा। तो इस तरह से अकबर के सिपाही ने कहा 50 रुपए। भक्त सोचने लगा 50 रुपए, 50 तो नहीं है पर बोल देता हूं। उसने कह दिया 100 रुपए। कितने रुपए? 100 रुपए। अरे बाप, 100 रुपए कहां से लाएगा वो? 1 रुपया जो कई दिनों की भीख से इकट्ठा करता है, 100 रुपए कहां से लाएगा? और सिपाही बोला ये तो पागल है, मैं कहीं और से खरीद लूंगा माला, लेकिन अब मैं जाना चाहता हूं। तो वो सिपाही चला गया अपना घोड़ा लेके, लेकिन ये जो भक्त था इसको फूल वाले ने पकड़ लिया। हर गरीब आदमी को, भक्त को समाज दबाना चाहता है, दबा दिया उसको, पकड़ लिया। फूल वाले ने कहा ओ अब नहीं भाग सकते तुम यहां से, तुमने वादा किया 100 रुपए लाओ तब मैं तुम्हें ये माला दूंगा। अब ये नहीं चलेगा कि वो तो चला गया, चल मुझे 1 रुपए में दे दे या 2 रुपए में दे दे, अब तो मैं इस माला को फेंक दूंगा गंगा यमुना नदी में, लेकिन तुमको 2 रुपए में नहीं दूंगा, दूंगा तो 100 रुपए में दूंगा। उसने कहा अच्छा ठीक है मैं जाता हूँ। अपने घर गया तो एक छोटा सा उनका घर था, पत्नी थी, बच्चे थे, तो उनको बोला घर से बाहर निकलो। और एक व्यापारी को बुलाया और उससे कहा अच्छा बताओ जरा मेरे घर में जो चूल्हा है, बच्चों का रहने का बैस, सोने का सामान है हमारे घर के अंदर, ये छोटा सा घर है, इसकी पूरे की कीमत कितनी? तो उसने कहा जोर लगा के अगर सोचो तो 100 रुपए के लगभग होगा। कहा अच्छा 100 रुपए बन जाएंगे, हाँ ठीक है तो फिर घर ले लो, चूल्हा ले लो, बंगला ले लो, सब कुछ ले लो जो आपको चाहिए हमारे घर के अंदर, लेकिन मुझे क्या दे दो 100 रुपए। और वो 100 रुपए लेकर तुरंत दौड़ता गया और भगवान के लिए माला खरीद ली। अब ये किसको माला चढ़ा रहा है? पत्थर को। किसको चढ़ा रहा है? भगवान को या फिर आर्चा विग्रह। और उसने लाकर राधा श्याम सुंदर पुजारी को कहा लीजिए पुजारी, आज मैं जैसे आप लोग भी बाहर से माला खरीदते हैं और भगवान को अर्पित करते हैं, लाकर कहा भगवान पुजारी, भगवान श्याम सुंदर के गले में एक गुलाब की माला डालो, आज मैंने अपना सब कुछ नछावर करके भगवान को सुंदर वेश धारण कराना चाहता हूँ, ये मेरी भगवान के प्रति प्रेम है। तो थोड़ी देर बाद पुजारी ने माला पहनाई और ऑल्टर बंद हो गया। अब थोड़ी देर बाद जब ऑल्टर खुला, दर्शन खुले, तो सारे भक्त देख रहे हैं, सब बोल रहे हैं विष्णु 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 विष्णु। क्या हो गया? भगवान का जो मुख है, गर्दन, वो मार्बल पत्थर का बना हुआ है लेकिन टूटा हुआ है, ऐसे लटका हुआ है। ऐसे होता है ना कई बार प्लास्टिक के खिलौने टूट जाते हैं तो लटक जाते हैं, तो भगवान का गर्दन लटका हुआ है। अभी लटका हुआ है तो पुजारी ने फटाफट ऑल्टर बंद कर दिया, दोबारा से दर्शन बंद हो गए। क्या हुआ? मूर्ति टूट गई, आर्चा विग्रह टूट गया, भगवान रुष्ट हो गए। पर फिर पुजारी ने रोते हुए प्रार्थना किया कि भगवान ऐसा क्या है जिसके लिए आप जो है ऐसे रो रहे हैं, ऐसे इस तरह से आपने अपनी गर्दन को झुका दिया है, तोड़ दिया है, क्या कारण है, क्या आप यहां से चले गए? क्योंकि कई बार जब अंचल विग्रह से भगवान प्रणायन कर जाते हैं तो पलायन करने के बाद वो विग्रह टूट जाते हैं, इसलिए क्रैक आ जाता है मूर्ति में, क्योंकि उस जगह से भगवान चले गए, उनको पसंद नहीं आई सेवा। तो ऐसा तो नहीं आप हमारी सेवाओं के कारण यहां से पलायन कर गए? तो भगवान ने कहा नहीं नहीं पुजारी, ऐसा कुछ भी नहीं, मैं इसलिए अपनी गर्दन को झुका रहा हूं क्योंकि दुनिया मेरे आगे गर्दन झुकाती है और मुझसे सब कुछ मांगकर अपना घर वहां बनाती है, लेकिन मैंने आज इसलिए सर झुकाया क्योंकि एक आदमी ने अपना सब कुछ बेचकर मुझको माला। हरि बोल। ये है। अब ऐसे कौन, मूर्ति तो कर सकती है, कर सकती है मूर्ति तो कर सकती है, सर कौन कर सकता है? भगवान कर सकते हैं, तो मूर्ति में भगवान आते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये भक्तों की जीवन चरित्र है, आप जब तक उसे मूर्ति समझेंगे तब तक वो मूर्ति है, जब आप उसे भगवान समझेंगे तब वो भगवान। तो अब हम आगे और सुनते हैं इसके बारे में वर्णन कि किस प्रकार से बताया गया है इसके अंदर। कहते हैं तया आत्मभूतया पिंडे व्यापते समपूज्यतम आवहम अर्च आदेशु स्थाप्य नास्ते अंगम माम प्रपूज्यते। भक्त परमात्मा का ध्यान करता है जिसकी उपस्थिति भक्त के शरीर को उसकी अनुभूति के अनुरूप अधिक भर देती है। इस तरह भक्त अपनी सामर्थ्य भर भगवान की पूजा करता है। कितनी? अपनी सामर्थ्य के अनुसार। हम लोग तो ऐसे हैं, सामर्थ होगी अगर 1,00,000 रुपए देने की तो निकालेंगे सड़ा गला 10 रुपए का नोट भगवान के लिए, है ना? हमें निकालना चाहिए क्या, सामर्थ्य भर भगवान की पूजा, उन्हीं में लीन हो जाता है। आर्चा विग्रह के विभिन्न अंगों का स्पर्श करके उपयुक्त मंत्र उच्चारण करके भक्त को चाहिए कि वो परमात्मा के अंचल विग्रह रूप में आने के लिए आमंत्रित करे और तब वो मेरी पूजा करे। तो भगवान कह रहे हैं यहाँ पर कि खाली ऐसे ही नहीं कि कोई मूर्ति घर में रख लिया और अपनी मर्जी से कुछ भी करने लगा और बोला कौन है, बोला हमारे घर गणेश जी की मूर्ति है तो ये भगवान गणेश है, नहीं ये मेरे घर कृष्ण भगवान की मूर्ति मेरी चाची ने गिफ्ट की थी तो ये भगवान है, नहीं। भगवान कैसे बनते हैं, आर्चा विग्रह के विभिन्न अंगों का स्पर्श करके, उनको स्पर्श करते हैं, उपयुक्त मंत्र उच्चारण करके भक्त को चाहिए कि आर्चा विग्रह रूप में आने के लिए भगवान को आमंत्रित करें, निमंत्रण दे, इन्विटेशन, तब वो मेरी पूजा करें। तो मंदिरों के अंदर जो आर्चा विग्रह प्राण प्रतिष्ठा है उसके लिए ब्राह्मण होते हैं, शुद्ध होते हैं, मंत्र उच्चारण से भगवान को आवाहन करते हैं, आमंत्रण। यहाँ पर शब्द इस्तेमाल हुआ है आवाहन अर्च आदेशु, आवाहन करके पूजा किए जाने वाले आंचल विग्रह, आवाहन किया जाता है भगवान का। तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि आपके घरों पे भी जो विग्रह है उसमें भी भगवान आते हैं, और भगवान को बुलाने के लिए बहुत बड़ा पंडित होना जरूरी है ना, क्या होना जरूरी है, प्रेम होना जरूरी है। आप ब्राह्मण हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप शूद्र हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप ब्राह्मण दीक्षित हैं कोई दिक्कत नहीं, आप दीक्षित हैं कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास अगर प्रेम नहीं है तो आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन। प्रेम पूर्वक अगर कोई व्यक्ति, प्रभुपाद जी कहते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करता है तो भगवान प्रसन्नता पूर्वक उस स्थान में आ जाते हैं। इसीलिए जब हमारे मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा होती है या अभिषेक होता है या कोई भी विधि अपनाई जाती है तो उस समय साथ साथ में क्या चलता रहता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र जो है कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार, भगवान नाम के रूप में अवतरित होते हैं, तो आप चाहते हैं आपके घर में अगर इन आठ प्रकार के आइटम में से कुछ भी है और उसमें भगवान आए और आपकी प्रार्थना स्वीकार करें और अनुरूप में आपको आशीर्वाद दें, उसके लिए आपको निरंतर भगवान के महामंत्र का जाप करना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है। हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। तो अपने घर के मंदिर में बैठकर इधर उधर ना झांकते हुए ध्यान पूर्वक भगवान से महामंत्र बोलना चाहिए। फिर आगे इसमें वर्णन करते हैं कि किस चीजों का भगवान को भोग लगाया जा सकता है, कई लोग प्रश्न पूछते हैं, तो भगवान ने यहाँ इसी अध्याय में बताया कि मैं क्या खाता हूँ, तो बता रहे हैं गुड़ा पायसा सपर्षी शुष्काली आप पमोदकान संयाव दधि सुपान चा नवेदम सति कल्प्यते। अपने साधनों के अंतर्गत भक्त को चाहिए कि मुझे भेंट करने के लिए, तो आइटम बता रहे हैं यहाँ पर कौन कौन सी वस्तु, गुड़, गुड़ तो होता है हमारे घर में और गुड़ से बनी हुई वस्तुएं भगवान खाते हैं, खीर दूध से बनी हुई आइटम चावल और दूध, घी घी से बनी हुई वस्तुएं, और शुष्क कुली, शुष्क कुली पता क्या होता है, कौन बता सकता है, शुष्क कुली बता सकता है कोई, शुष्क कुली शास्त्र में कभी सुना है, हम रोज खाते हैं, हाँ ड्राई फ्रूट, शुष्क कुली नहीं, पूरी पूरी जगन्नाथ पूरी वाली पूरी, तो पूरी जो है ना पूरी आलू, वो पूरी भगवान खाते हैं, और भगवान खाते हैं मोदक, मोदक क्या होता है, लड्डू, लड्डू का भोग भगवान को अच्छा लगता है, और सायावा दही, दही खाते हैं भगवान, है ना, मक्खन चोर है जैसे भगवान ऐसे दही हांडी भी खाते थे भगवान, और शाक, शाक मतलब सब्जियां, शाक शोरबा गीली सब्जी, एक तो होती सूखी सब्जी शाक, एक होती शाक शोरबा गीली सब्जियां, अन्य स्वादिष्ट भोजन भेंट करने के लिए व्यवस्था करें और भगवान के लिए इस तरह का आइटम। अब भगवान के लोग भोग पूछते हैं क्या लहसुन प्याज का भोग नहीं लगा सकते, तो अगर लिखना होता तो भगवान यहाँ पर लहसुन प्याज भी जोड़ देते हैं, लेकिन उन्होंने जो जो चीजें बताई वही खाते। जैसे हमें कभी अपने पति को खाना खिलाना हो और बच्चों को खाना खिलाना हो तो माताएं पूछती हैं आप क्या खाओगे, या ये बोलती हैं जो मैं चाहती हूं वो तुमको खाना पड़ेगा, ऐसा होता है? वो बोलती हैं जो आप खाओगे वो मैं खिलाऊंगी। तो भगवान जो खाना चाहते वही तो खिलाएंगे, या कुछ भी बिस्कुट का भोग लगा देंगे? बोले प्रभु जी टाइम नहीं था, पार्ले जी लगा दिया, काम चल गया, होगा ऐसा? तो भगवान जो खाते हैं वही तो लगाओगे तभी खाएंगे, वरना काम का रखा रहेगा, आप सोचोगे भोग लग गया, नहीं भोग नहीं लगेगा। भगवान भोग को प्रसाद रूप में परिवर्तित करते हैं जब उनकी इच्छा अनुरूप प्रीति पूर्वक हम उन्हें खिलाते हैं। तो भोग जो है वो कैसे प्रसाद में परिवर्तित हो जाता है, तो इसमें भी लोग प्रश्न पूछते हैं कि हमने देखा है लड्डू भगवान के आगे भोग लगाते हैं, तुलसी दल रखते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं, पर्दा बंद करते हैं, थोड़ी देर बाद जब हम भोग उठाते हैं तो वो प्रसाद बन जाता है, लेकिन लड्डू में ना दांत लगा होता है, ना हाथ लगा होता है, ना गीला होता है, जैसा का तैसा लौट आता है। तो ऐसे कैसे भगवान जो है ना भोग कर लिए, भोग खा लिए? कहाँ खाते हैं? ये सब तो क्या है जी, ये सब तो है ना रूढ़िवादी विचारधारा है, ये सब तो दिखावा है, ये सब तो हिंदू धर्म के ना अंधविश्वास है, ऐसे कोई कोई खाता थोड़ी है। तो भगवान कोई नहीं है, भगवान कौन है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण, भगवान है वो। तो इसलिए भगवान जब आप उनके आगे भोग की प्लेट रखते हैं तो भगवान उस भोग में से दृष्टि से दृष्टिपात करने मात्र से भोग ग्रहण करते हैं। तो भगवान को कहा जाता है अंगानि यस्य सकलेन्द्रिया वृति मान्ति पश्यन्ति पान्ति कल्यान्ति चिरं जगान्ति आनन्दा चिन्मया सदुजला विग्रहस्य गोविन्दं आदिपुरुषं तमहं भजामि। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिया, किसी भी अंग से कोई भी काम कर सकते हैं भगवान, इसलिए वो भगवान है। हमें सूंघना हो तो कौन सा अंग यूज करेंगे? हाँ जी हाथ, नाक। देखना हो तो कैसे देखेंगे? आंखों से। लेकिन भगवान को अगर खाना हो तो मुख की जरूरत नहीं है, मुंह चलाने की जरूरत नहीं है, आंखों से ही खा जाते हैं, है ना? जैसे कई लोग बोलते हैं ना, अरे मेरी मम्मी तो इतनी खतरनाक है, आंखों से ही खा जाती है। तो ऐसे ही भगवान आंखों से खाते हैं। जिस आपका प्रेम देखते हैं किस भाव से लगा रहा है ना, वो खड़े होते हैं ऐसे और देखते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, लगा रहा है, और फिर आंखों की दृष्टि से उसको खा लेते हैं। खाते हैं जी प्रभु जी, माना आंखों की दृष्टि से, लेकिन उसमें तो कुछ खाया नहीं होता, वैसा का वैसे होता है। हमारे जी गांव में एक बार हुआ था, दांत लगा हुआ था, वो था चमत्कार, ये थोड़ी चमत्कार है कोई, हमने हम भगवान मानते हैं। तो भगवान को मान लीजिए, अभी होली आ रही है ना, और होली के दिनों में एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं लोग, आइए जी हैप्पी होली, तो उसमें किसी को हम गुजिया बनाते हैं, कोई लड्डू बनाता है, कोई जूस बनाता है, कोई कांजी बनाता है, कोई गाजर का जूस, और एक दूसरे को भेंट करते हैं। तो मान लीजिए ये स्टील का ग्लास किसी ने हमें भेंट किया है ना, इसके अंदर भरा हुआ है क्या? दूध। क्या भरा हुआ है? दूध। दिख रहा है आपको? नहीं नहीं। अब ये दूध यहाँ आया, अब हमारे घर में हमने उसको दूध को अपने बर्तन में डाल दिया, अब पड़ोसी को खाली गिलास देंगे, क्या देंगे? उसमें कुछ डाल के देंगे। तो हमने उसके अंदर भर दिया ट्रॉपिकाना या रियल जूस या ऑरेंज जूस, और फिर वापस दे दिया। तो अब जब वापस जा रहा है तब भी पता नहीं चल रहा क्या है, जब आया था तब भी पता नहीं चल रहा था क्या है। तो इसी तरह से जो दूसरा देखने वाला है ना, वो इस पड़ोसी ने इस पड़ोसी को गिलास दिया, और फिर इस पड़ोसी ने वापस इस पड़ोसी को गिलास दिया। तो जब इधर से इधर गया तब उसमें क्या था? दूध। और जब इधर से इधर आया तो क्या था? लेकिन देखने में गिलास गया और गिलास आया। ऐसे ही हमारा लड्डू या रोटी या पूड़ी भगवान को जाती है कि उसमें भरा होता है क्या? पाप। क्या भरा होता है? पाप। हमारे मानसिक विचारधारा है, हमने जो छल करके चीटिंग करके हमने नहीं किया, तो जहां से हमने गेहूं खरीदा आटा खरीदा उस आदमी ने छल किया, वो सारा पाप उस खाने में आता है। और फिर जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो भगवान उस मटेरियल में से क्या निकाल लेते हैं? पाप। दूध निकाल लिया और क्या भर देते हैं उसमें? जूस भरते हैं। जूस मतलब कृपा, अपनी कृपा भर देते हैं। तो जाता भी पराठा है आता भी पराठा है, जाता भी लड्डू है आता भी लड्डू है। जब गया तो पाप का लड्डू था, जब आपका तो था ही लेकिन पाप का भी था, गया तो पाप का लड्डू था, वापिस आया तो कृपा का लड्डू है
है ना,
इस तरह से भगवान खाते हैं। और भगवान इसीलिए गीता में कहते हैं यज्ञ विशिष्टा अश्नो मुचंते सर्वकल विषाम भुजंते ते अघम पापम ये पच्यंते आत्म कारणात्। तीसरे अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो अपने लिए खाना बनाता है वो पाप खाता है, जो मेरे लिए खाना बनाता है उसके सारे पाप मैं नष्ट कर देता हूं और उसको क्या देता हूं, प्रसाद। इस तरह से प्रसाद रूप में परिवर्तित हो जाता है हमारा भोग। तो इस तरह से श्रीमद् भागवतम में आप पढ़ सकते हैं और अनेकों चीजें बताई गई हैं किस प्रकार से भगवान की सेवा की जाए। अब हम आपको बता रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु से, इसके अंदर 32 ऐसी चीजें बताई गई हैं जो कि व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए, है ना, भगवान की सेवा में। कुल मिलाकर यहां पर 64 चीजों का वर्णन हुआ है, दो भागों में बांटा गया है, 32 और 32। तो हम एक एक करके चीजों को बोलना शुरू करेंगे, तो आप उसे सुन भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, ध्यान भी रख सकते हैं। अगर 64 में से 6 भी याद रखी तो आपका भगवान सेवा स्वीकार करेंगे, क्योंकि जब हम भगवान की सेवा करते हैं जब तक प्रेम अर्जित नहीं किया है तब तक हमसे अनेकों अपराध होते हैं। सारे के सारे लोग दौड़ के ना घरों में अपने अपने मूर्ति रखना चाहते हैं, हम भी मूर्ति रखेंगे, हम भी भगवान बुलाएंगे, हम भी आमंत्रित करेंगे, हम भी हरे कृष्णा करेंगे, लेकिन अपराध रहित होकर। अगर अपराधों के साथ भगवान की पूजा करेंगे तो भक्ति चली जाएगी और आपको नर्क मिलेगा। तो इसलिए रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु के 8वें अध्याय में 64 इस प्रकार के अपराध बताए हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, इनको सेवा अपराध कहते हैं। सबसे पहला, भगवान के मंदिर में कभी भी आए तो बहुत बड़ी पालकी में या फिर जूतों के साथ या फिर कार के साथ ना आए। हाँ जी प्रभु जी, अगर कार से नहीं आ सकते तो मंदिर कैसे आएंगे, हम तो आएंगे नहीं। कार से आए लेकिन भगवान के मंदिर के सामने बिल्कुल जहां भगवान दिखते हैं वहां गाड़ी को ना खड़ा करें, गाड़ी कहीं लेफ्ट राइट होनी चाहिए, जहां से भगवान दिख रहे हैं वहां गाड़ी नहीं खड़ी करनी चाहिए। अगर आपको खिड़की से भगवान दिख रहे हैं ना तो गाड़ी ऐसी जगह खड़ी करें जहां भगवान दिख नहीं रहे, चप्पल ऐसी जगह उतारें जहां भगवान नहीं दिख रहे। लोग भगवान के मंदिर के सामने चप्पल उतार के आ जाते हैं, वो गलत है, वो अपराध है, उस व्यक्ति का कुछ भी चढ़ाया गया भगवान स्वीकार नहीं करेंगे, अपराध हो गया, चप्पल भगवान के आगे उतार दी। या पालकी, उस जमाने के हिसाब से लिखा है जब लोग पालकी में चलते थे, पालकी भगवान के सामने नहीं, और आजकल हमारी पालकी क्या है, गाड़ी, वो भगवान के सामने नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। दूसरा अपराध बताया गया है कि जितने भी फेस्टिवल आते हैं, उत्सव आते हैं, रथ यात्रा, जन्माष्टमी, अब आने वाली गौर पूर्णिमा, ऐसे उत्सवों को इग्नोर कर देना, इनके अंदर भगवान का दर्शन करने नहीं आना, ये भी अपराध है। उत्सव के दिन, अरे जन्माष्टमी, अरे मेरी तो कमर में दर्द है, चाहे 5 मिनट के लिए आए, हमें हर उत्सव को ध्यानपूर्वक दृढ़ता से करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। भगवान के मंदिर में आने के बाद भगवान को दंडवत ना करना, क्या नहीं करना, दंडवत। दंडवत का मतलब क्या होता है, कौन बताएंगे, दंडवत क्या होता है, दंडवत गिर करके प्रणाम, मतलब साइड में गिर जाओ प्रणाम, हाँ क्या मतलब है, अष्टांग बताइए क्या होता है, अष्टांग, हाँ कौन कौन से हैं बताइए, बताइए जल्दी बताइए, हाँ कितने हुए, हाँ 8 अंग जो है, जब दंडवत का मतलब होता है डंडे के समान गिरना। जी प्रभु जी, क्यों आप लोग ऐसे गिरते हैं, हमने तो कभी नहीं देखा, हम लोग तो जब छोटे थे स्कूल जाते थे ऐसे कर देते थे, या स्कूटर पे बैठ के ऐसे कर देते थे, उसी से पूजा हो जाती थी। आप लोगों ने नया सिस्टम बनाया, खड़े खड़े गिर जाओ दंडवत, ये कहां लिखा है। तो श्रीमद् भागवतम में 11वें स्कंद में भगवान कहते हैं कि मैं कैसे प्रणाम स्वीकार करता हूं, कहते हैं स्तवे उच्च उर्वच स्त्रोते पौराण प्रकृते रपी स्तुत्वा प्रसीद भगवान इति वदन्ते दंडवतम। भगवान कहते हैं कि भक्तों को चाहिए पुराण तथा अन्य प्राचीन शास्त्रों तथा समान परंपरा के अनुसार सभी प्रकार की स्तुतियां प्रार्थनाओं से भगवान को श्रद्धा से अर्पित करें, और उसे चाहिए कि हे प्रभु मुझ पर दयालु हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए पृथ्वी पर दंड की तरह गिरकर नमस्कार करें। तो दंडे के समान गिरने के लिए बोला है, ऐसे नहीं बोला ऐसे माता जी कहते हैं वहां गिर के कहीं पे भी गिर के प्रणाम कर लिया, नहीं, दंडवतम। तो भगवान ने कहा मुझे दंडवतम दंडवत करना चाहिए। तो इसलिए इस संप्रदाय में शास्त्रों और पुराणों के अनुसार हमने एक चीज इंट्रोड्यूस किया आपको, क्या दंडवत कम करना भगवान को। और भगवान के मंदिर के अंदर कभी भी खाना नहीं चाहिए। जैसे कोई किसी ने प्रसाद दिया, जी हम जगन्नाथपुरी गए थे आपके लिए प्रसाद, और भगवान का दर्शन खुला हुआ है, तुम खा रहे हो, हम भूखे रहे, हम भी खा लेते हैं, तो वो गलत सिस्टम है। सही तरीका क्या है, रूप गोस्वामी कहते हैं भगवान के मंदिर प्रांगण के अंदर नहीं खाना। अगर किसी ने कुछ दिया, इवन चरणामृत भी, प्रयास करें भगवान के मंदिर से बाहर निकलकर, भगवान की नजरों से दूर होकर फिर हम उसको खाएं, तब उसको प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए, वरना वो अपराध में काउंट होता है। भगवान के मंदिर के अंदर बहुत ही अशुद्ध अपवित्र स्थितियों में नहीं आना चाहिए। तो आज हमने जिस तरह से सुना किस प्रकार से एक मूर्ति और आर्चा विग्रह में फर्क होता है, किस प्रकार से पत्थर में भगवान प्रवेश कर जाते हैं, और हमें कौन सी शुद्धि करनी चाहिए बताया था, कौन कौन सी शुद्धि बताई थी भगवान की सेवा में, बताइए प्रभु जी, सब सो रहे हैं, हाँ बताइए माता जी, बताइए, हाँ बताइए, स्नान करना चाहिए और, हाँ जी, और क्या करना चाहिए, तिलक और कपड़े और दांत मांजने चाहिए और मंत्र उच्चारण, इतनी सारी शुद्धि के बाद भगवान के मंदिर में आना चाहिए, है ना। कोशिश ये करें, वरना वो नहीं होना चाहिए कि स्लीपिंग सूच में भगवान के पास आ गए, ब्रश भी नहीं किया, बोले मैं तो मॉर्निंग वॉक पे निकला था, बैटरी भी नहीं ली, तो मैंने सोचा चलो आया हूँ तो दर्शन करता हुआ चलता हूँ, तो वो गलत तरीका है। लेकिन कोई नए नए आते हैं तो उनको हम टोक नहीं सकते, आते हैं ठीक है, भगवान के भक्त हैं, आए हैं, एक ना एक दिन ये भी शुद्ध हो जाएंगे, लेकिन भक्त बनने के बाद, मंदिर के कार्यक्रम में आने के बाद हमें प्रयास करना चाहिए, स्नान आदि मंत्र आदि कर कर ही भगवान के मंदिर में आए हम लोग। भगवान के मंदिर में प्रणाम करते वक्त एक हाथ से प्रणाम करना, एक हाथ से ना, एक हाथ में बैग है, एक हाथ में बहुत सारा मोबाइल है, फोन है, आए तो ऐसे दंडवत कर दिया सुपरमैन, वो गलत तरीका है। चलिए भगवान के मंदिर में अगर दंडवत करना है तो फिर दोनों हाथ दंडवत होने चाहिए, ऐसे 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 जितना आप कर सकते हैं उतना। और भगवान के मंदिर में आकर परिक्रमा ना करना, ये भी अपराध है। भगवान के मंदिर में आए तो परिक्रमा करने का कारण होता है भगवान को केंद्र बिंदु बनाना अपने जीवन का। जिस चीज को हम अपने जीवन का केंद्र बनाना चाहते हैं उसके इर्द गिर्द हम घूमते हैं ना, उसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, तो उसी तरह से गोवर्धन परिक्रमा करते हैं ताकि ये हमारे जीवन का केंद्र बिंदु हो हृदय में प्राण धन। ऐसे ही भगवान तुलसी महारानी की प्रदक्षिणा, भगवान की प्रदक्षिणा अवश्य करनी चाहिए। कितनी बार प्रदक्षिणा करनी चाहिए, हाँ जी तीन बार। तीन बार क्यों करनी चाहिए, तीन बार क्यों करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए तीन बार, तीन क्यों करनी चाहिए, मेरा मर्जी, मैं तो केंद्र बिंदु आज बना के छोड़ूंगा 108 बार करूंगा, बोलो जी क्या दिक्कत है आपको, कोई तीन क्यों, हाँ कौन से दोष है, हाँ ऐसे भी बोल सकते हैं, तीन प्रकार के दोष जो है हमारे जो ताप है तीन प्रकार के, उनको नष्ट करने के लिए आदि आदि भौतिक आदि आदि, और यहाँ से तीन गुणों से जिसमें हम फंसे हुए हैं, रजोगुण तमोगुण और सत्वगुण, ये तीनों ही बंधन के कारण है, इनसे हमें मुक्त करने के लिए हम भगवान की प्रतीक्षा करते हैं कि भगवान हमें जिस प्रकार से आप गुणातीत हैं, सारे गुणों से परे हैं, अपने भक्तों को भी इन गुणों से बाहर निकालकर शुद्ध सत्व स्तर पर लाकर हमें भक्ति में प्रेम पूर्वक अपने भजन में लगाइए, अपनी सेवा में लगाइए, है ना। हम गुणों में फंसे रहेंगे, कभी रजोगुणी कभी तमोगुणी कभी सत्वगुणी, तो हम गुणों में फंस के रह जाएंगे, चाहे वो कैसा भी गुण हो लेकिन बंधन कारक होता है। What time we can stop? अच्छा ठीक है, तो I should stop here, right? ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर हमने आज सात चर्चा की और आठवां है जो आपको बता देते हैं, और दो अपराध मुख्य इसमें से 64 है, आप पढ़ सकते हैं, जो इसमें से इंपॉर्टेंट है दो तीन और मैं आपको बताता हूँ, बाकी हमने चर्चा कर लिया है। भगवान के मंदिर में पैर सीधे करके भगवान की तरफ बैठना, भगवान के सामने पैर करके, तुम बैठे हो रिलैक्स में, मैं बैठा हूँ फुल रिलैक्स में, है ना, तो वैसे नहीं होना चाहिए, अपने पैरों को ढक करके भगवान के सामने बैठना चाहिए। इसीलिए प्रभु जी को कुर्ते धोती में आना चाहिए, माताओं को साड़ी में आना चाहिए, ताकि हम अपने पाँवों को ढक कर बैठ सकें, पाँव खुले हुए को पकड़ना भी नहीं चाहिए भगवान के मंदिर में। और भक्तों को दंडवत प्रणाम करना, भगवान का विग्रह जब खुला हो दर्शन, उस समय लोग आते हैं दंडवत प्रणाम प्रभु जी, तो बोल सकते हैं हरे कृष्णा बोल सकते हैं, लेकिन दंडवत करना ये अपराध है। भक्त भी मना करते रहते हैं लेकिन भक्त मानते ही नहीं है कि नहीं करिए नहीं करिए, भगवान का जब दर्शन खुला हो तो किसी भी भक्त को प्रणाम नहीं करते, जो प्रणाम प्रेम है आपका वो सारा मंदिर के बाहर कर सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ प्रभुपाद या आचार्य या भगवान को ही प्रणाम किया जाता है।